दानियल की पुस्तक संख्या 32
सिंहों से छल तक दानियल 6 और अंतकालीन भविष्यवाणी सा गहन विश्लेषण।
दानियल का 6 अध्याय। दानियल के पहले 6 अध्यायों में तीसरी रेखा है जो सीधे तौर पर रविवार के कानून के संकट का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। तीसरे अध्याय में नबुकदनेस्सर की सोने की मूर्ति और 3 वीर उस ध्वज का प्रतीक थे जो ऊंचा उठाया जाता है और समस्त संसार उसे देखता है।
तब राजा नबुकदनेस्सर ने राजकुमारों, प्रांतपालों, सेनापतियों, न्यायाधीशों, कोषाध्यक्षों, सलाहकारों, हाकिमों और सब प्रांतों के शासकों को इकट्ठा करने को भेजा ताकि वे उस प्रतिमा के उद्घाटन में आएं जिसे राजा नबुकदनेस्सर ने स्थापित किया था। दानियल 3:2
तीसरे अध्याय में 3 धर्मनिष्ठ पुरुषों ने नमने से इनकार किया और उनके इस कार्य के कारण उन्हें उत्पीड़न स्वरूप अग्नि की भट्टी का सामना करना पड़ा। जबकि 6 अध्याय में दानियल दिन में 3 बार नतमस्तक होता है और उसके इस कार्य के कारण उसे उत्पीड़न स्वरूप सिंहों की माद का सामना करना पड़ा। पंक्ति पर पंक्ति ये घटनाएं रविवार के कानून के उत्पीड़न को उपासना के निर्णय के रूप में प्रस्तुत करती हैं जो दोनों ही मामलों में विश्वास योगियों द्वारा पहले से ही तय किया जा चुका है। 3 और 1 के इस संयोजन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोग जो 144,000 का प्रतीक है उत्पीड़न की हिलावट आने से पहले ही सत्य में स्थिर हो चुके हैं।
स्वर्गदूत ने कहा, अपने आप का इनकार करो, तुम्हें तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। हम में से कुछ को सत्य ग्रहण करने और कदम दर कदम आगे बढ़ने का समय मिला है और हमने जो भी कदम उठाया इसने हमें अगला कदम उठाने की शक्ति दी है। पर अब समय लगभग समाप्त होने को है और जो बातें हम वर्षों से सीखते आए हैं उन्हें कुछ महीनों में सीखना पड़ेगा। उन्हें बहुत कुछ भूलना भी होगा और बहुत कुछ फिर से सीखना भी होगा। जब फरमान जारी होगा तब जो लोग पशु का चिन्ह और उसकी प्रतिमा ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें अभी ये निर्णय करना होगा कि नहीं, हम पशु की संस्था का मान नहीं रखेंगे। प्रारंभिक लेखन 67।
5वें अध्याय में रविवार का कानून धरती के पशु के अंत और दीवार से होकर आए शत्रुओं द्वारा लाए गए न्याय को संबोधित करता है।
उस रात कल्दियों का राजा बेलशस्सर मारा गया और डारा मादी ने राज्य पाया। उस समय उसकी आयु लगभग 62 वर्ष की थी। दानियल 5:33 थी।
6 अध्याय में परमेश्वर के लोगों की मुहरबंदी जिसका प्रतिनिधित्व सिंहों की मांद पर राजा की मोहर लगाए जाने से होता है पहचानी जाती है।
और एक पत्थर लाया गया और उसे मांद के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उसे अपनी मुहर से और अपने सरदारों की मुहरों से मुहरबंद कर दिया ताकि दानियल के विषय में इरादा न बदला जाए। दानियल 6:17।
तीनों रेखाएं इस पताका की विशेषताओं में योगदान देती हैं जो बादल में ऊपर उठाई जाती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में महान भूकंप की घड़ी के दौरान।
और उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ी आवाज सुनी जो उनसे कहती थी, यहां ऊपर आओ। और वे एक बादल में होकर स्वर्ग में ऊपर उठ गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा और उसी घड़ी वहां बड़ा भूकंप आया और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए और जो बाकी रह गए वे भयभीत हो गए और स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा दी। प्रकाशित वाक्य 11:12-13।
दानियल अध्याय 6 परमेश्वर की प्रजा की मूग मुहरबंदी की पहचान कराता है, परंतु ये अधिक विशेष रूप से उन अध्यक्षों, हाकिमों, राजकुमारों, सलाहकारों और सेनापतियों के संघ के दंड को संबोधित करता है जिन्होंने राजा को छल कर दानियल को मरवा देने के लिए उकसाया। राज्य का प्रतीक माने जाने वाले राजा को धोखा देना एक महत्वपूर्ण भविष्य सूचक विषय है जिसमें कई भविष्य सूचक साक्षी सम्मिलित हैं। अध्याय 3 के नबुकदनेस्सर और अध्याय 5 के बेलशस्सर के विपरीत जो संकट आने तक दानियल और उन 3 साक्षियों से बेखबर थे, दारा का दानियल के प्रति झुकाव संकट से पहले ही दिखाई देता है जो रविवार के कानून के संकट के लिए एक भिन्न परिस्थिति की पहचान कराता है। दानियल अन्य 2 प्रधानों से अधिक प्रिय ठहराया गया था और वे 3 प्रधान 120 अधिपतियों के ऊपर थे। दानियल की तुलना मुख्यतः प्रधानों और अधिपतियों से की गई है।
और वो उन दो से अधिक प्रिय है जो छल का एक गठबंधन बनाते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व पांच द्वारा होता है, पांच मूर्ख कुमारियां।
दारियुस को यह अच्छा लगा कि वो राज्य पर 120 अधिकारी नियुक्त करे जो समूचे राज्य पर हों, और उनके ऊपर तीन प्रधान अधिकारी रखे जिनमें दानियल प्रथम था, ताकि वे अधिकारी उन्हें हिसाब दें और राजा को कोई हानि न पहुंचे। तब दानियल प्रधान अधिकारियों और अन्य अधिकारियों से बढ़कर ठहराया गया, क्योंकि उसमें एक उत्कृष्ट आत्मा थी, और राजा ने ठाना कि उसे सारे राज्य पर नियुक्त करे। तब प्रधान अधिकारियों और अधिकारियों ने राज्य के संबंध में दानियल के विरुद्ध कोई आरोप ढूंढना चाहा, पर वे न कोई अवसर पा सके न कोई दोष, क्योंकि वो विश्वास योग्य था और उसमें न कोई भूल पाई गई न दोष। तब उन लोगों ने कहा, हम इस दानियल के विरुद्ध कोई अवसर नहीं पाएंगे सिवाय इसके कि हम उसके परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में उसके विरुद्ध कुछ पाएं। दानियल 6:1-5।
दारियस का उपयोग उस छल को दर्शाने के लिए किया जा रहा है जो राजा के विरुद्ध अंजाम दिया जाता है। ये राजा दुनिया के अंत में 10 राजाओं संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये छल उस घृणा में योगदान देता है जिसे 10 राजा संयुक्त राष्ट्र वेश्या पोप तंत्र के विरुद्ध प्रकट करते हैं, जो उन्हें उसे उजाड़ और नग्न करना और उसका मांस खाना और उसे आग से जला देना के लिए प्रेरित करता है।
और वे 10 सिंह जिन्हें तूने उस पशु पर देखे थे, वे वेश्या से घृणा करेंगे और उसे उजाड़ और नग्न कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और आग से उसे जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय में ये डाल दिया है कि वे उसकी इच्छा पूरी करें और एक मन हों और अपना राज्य उस पशु को दे दें, जब तक कि परमेश्वर के वचन पूरे न हो जाएं। और वो स्त्री जिसे तूने देखा, वही वो महान नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है। प्रकाशित वाक्य 70:16-18।
संयुक्त राष्ट्र सातवां राज्य पोप की सत्ता को नष्ट कर देगा, हालांकि वे अभी अभी उसे अपना राज्य दे चुके होंगे, क्योंकि वे थोड़े समय के लिए शासन करते हैं।
और 7 राजा है, 5 गिर चुके हैं, 1 है और दूसरा अभी तक नहीं आया है, और जब वो आएगा तो उसे थोड़े समय तक ठहरना होगा। प्रकाशित वाक्य 17:1।
रविवार के कानून के समय बाइबल की भविष्यवाणी का 6 राज्य प्रकाशित वाक्य 13 का पृथ्वी का पशु संयुक्त राज्य अमेरिका 70 प्रतीकात्मक वर्षों के अपने शासनकाल को अभी अभी समाप्त कर चुका है, जिनमें बाइबल की भविष्यवाणी का 5 राज्य प्रकाशित वाक्य 13 का समुद्र का पशु पापाई सत्ता यशायाह 23 के उन 70 प्रतीकात्मक वर्षों के दौरान बुला दिया गया था।
और उस दिन ऐसा होगा कि सूरार 70 वर्ष तक भुला दिया जाएगा। एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष के अंत में सोर वेश्या के समान गाएगा, वीणा ले नगर में घूम हे भुलाई हुई वेश्या, मधुर राग छेड़ बहुत से गीत गा ताकि तुझे स्मरण किया जाए। और 70 वर्ष के अंत के बाद ऐसा होगा कि यहोवा सोर की सुधि लेगा और वो फिर अपनी मजदूरी पर लौटेगी और पृथ्वी के ऊपर संसार के सब राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी। यशाया 23:15-17।
रविवार के कानून के लागू होने पर बाइबल की भविष्यवाणी का 7 राज्य 10 राजा संयुक्त राष्ट्र शासन आरंभ करता है, परंतु केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि 10 राजाओं का प्रधान राजा तब समूचे संसार को पशु के ढांचे के अधीन लाने के लिए बलपूर्वक अपना कार्य आरंभ करता है, जो कलीसिया और राज्य का सम्मिलन है और जिसका प्रतीक पशु की प्रतिमा है।
और मैंने पृथ्वी से निकलते हुए एक और पशु को देखा, और उसके 2 सींग थे जो मेमने के समान थे, और वो अजगर के समान बोलता था, और वो पहले पशु के सामने उसके सब अधिकार का प्रयोग करता है और पृथ्वी तथा उसमें रहने वालों को उस पहले पशु की उपासना करवाता है जिसका प्राण घातक घाव भर गया था, और वो बड़े बड़े चमत्कार करता है यहाँ तक कि वो मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग से पृथ्वी पर आग उतार देता है, और उन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें करने की उसे उस पशु के सामने शक्ति दी गई थी, वो पृथ्वी पर रहने वालों को भरमाता है और पृथ्वी पर रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की एक प्रतिमा बनाएं जिसे तलवार का घाव लगा था फिर भी वो जीवित रहा। प्रकाशित वाक्य 13:2।
पृथ्वी का पशु संयुक्त राज्य मेमने के रूप में आरंभ होता है और अंत में ड्रैगन की तरह बोलता है। उसके प्रतीकवाद का एक प्रमुख तत्व उसका बोलना है। भविष्य सूचक अर्थ में बोलना विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों की कार्रवाई को दर्शाता है।
किसी राष्ट्र का बोलना उसकी विधायी और न्यायिक सत्ताओं की कार्रवाई है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 443।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार मेमने की तरह बोला, तब उसने संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाया और इस प्रकार पोपतंत्र तथा यूरोप के राजाओं द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से भाग रहे लोगों के लिए शरण की भूमि की स्थापना की।
और पृथ्वी ने स्त्री की सहायता की, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उस बाढ़ को निगल लिया जो अजगर ने अपने मुंह से उगल दी थी। प्रकाशित वाक्य 12:16।
70 प्रतीकात्मक वर्षों के अंत में पृथ्वी का पशु फिर बोलता है, परंतु इस बार ड्रैगन के रूप में, जब वो रविवार की उपासना को लागू करता है जो पापाई अधिकार का चिन्ह है। जब पापाई अधिकार का चिन्ह लागू किया जाता है, तब पोपाई सत्ता याद आती है, और उसकी याद तब आती है जब उस आज्ञा का पालन करना, जिसे कभी भुलाया नहीं जाना था, अवैध बना दिया जाता है।
विश्राम दिन को स्मरण रखना कि तू उसे पवित्र माने। 6 दिनों तक तू परिश्रम करेगा और अपना सब काम करेगा, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें तू कोई काम न करेगा, न तू, न तेरा पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशुधन, न वो परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है, क्योंकि 6 दिनों में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। निर्गमन 20:8-11।
राष्ट्रीय धर्मत्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है, और वे 3 शक्तियां जो दुनिया को आर्मगेडन की ओर ले जाती हैं, हाथ मिला लेती हैं।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोपसत्ता की स्थापना को प्रवर्तित करने वाली राजाज्ञा के द्वारा हमारा राष्ट्र अपने को पूर्णतः धार्मिकता से पृथक कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी शक्ति का हाथ थाम लेगा, जब वो उस गर्त के ऊपर से हाथ बढ़ाकर आत्मवाद के साथ हाथ मिला लेगा, जब इस त्रिविध संघ के प्रभाव के अधीन हमारा देश प्रोटेस्टेंट और गणतंत्रीय शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा और पोपीय मिथ्याओं तथा प्रबल ब्रह्मों के प्रचार के लिए प्रबंध करेगा, तब हम जान सकेंगे कि शैतान की अद्भुत कार्य साधना का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। टेस्टिमोनीज खंड 5:450।
जब प्रोटेस्टेंट वाद संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमी सत्ता वैटिकन और आत्मवाद संयुक्त राष्ट्र रविवार के कानून पर हाथ मिला लेते हैं, तो वे दुनिया को आर्मगेडन की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं, जिसे इस रूप में दर्शाया गया है कि पहले दुनिया को एक ऐसी विश्व सरकार के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो चर्च और राज्य से मिलकर बनी हो और जिसमें उनके संबंध पर नियंत्रण चर्च का हो। पृथ्वी के पशु द्वारा प्रयुक्त चमत्कारों की शक्ति न केवल टायर की वेश्या का पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार कराती है, बल्कि वे पशु की विश्वव्यापी प्रतिमा के बोलने को भी लागू कराती है। भविष्यवाणी की परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ है कि उस एक विश्व सरकार के पास एक विधायी निकाय न्यूयॉर्क में स्थित और एक न्यायिक निकाय हेग में स्थित होना चाहिए।
और वह पृथ्वी पर रहने वालों को चमत्कारों के द्वारा धोखा देता है जिन्हें वो पशु के सामने करने की सामर्थ्य रखता है, और पृथ्वी पर रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की एक प्रतिमा बनाएं जिसे तलवार का घाव लगा था तो भी वो जीवित रहा, और उसके पास पशु की प्रतिमा में प्राण फूंकने की सामर्थ्य भी थी ताकि पशु की प्रतिमा बोल भी सके, और जो जो लोग पशु की प्रतिमा की आराधना न करें उन्हें मार डाला जाए, और वो छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास, सबको उनके दाहिने हाथ या उनके ललाट पर एक चिन्ह लगवा देता है, और कि कोई भी खरीदना या बेचना न कर सके सिवाय उसके जिसके पास वो चिन्ह या पशु का नाम या उसके नाम की संख्या हो। यहाँ बुद्धि है, जो समझ रखता है वो पशु की संख्या गिने, क्योंकि वो मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। प्रकाशित वाक्य तेरा हरारा तेरा ताटा।
पृथ्वी का पशु संकराजमेरगा पूरे संसार को धोखे में डालकर पशु की एक विश्वव्यापी प्रतिमा स्वीकार कराने पर मजबूर करेगा। वही प्रतिमा जिसे संकराजमेरगा ने रविवार के कानून को आगे बढ़ाते हुए और अंततः लागू करवाते हुए बनाई थी। तब वो एक विश्व सरकार को ये अधिकार देगा कि वो अपने कानून मृत्युदंड और या आर्थिक दंड की धमकी के तहत लागू करे। राजा दारियस को दिया गया छल भविष्यवाणी में बार बार पहचाने जाने वाले राजाओं के छल का प्रतीक है, क्योंकि जब पृथ्वी का पशु दुनिया को एक विश्व सरकार स्वीकार कराने के लिए बाध्य करना शुरू करता है तो इस व्यवस्था को मनवाने के लिए जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि जो शक्ति राष्ट्रों को क्रोधित कर चुकी है इस्लाम, उसका मुकाबला एक विश्वव्यापी युद्ध से किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका पोप के द्विजी के चिन्ह को लागू करता है क्योंकि ईश्वर के न्याय के कारण रविवार के कानून के लागू होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गया था कि समाधान के रूप में ये प्रस्ताव रखा गया कि कैथोलिक धर्म के ईश्वर की ओर लौट आने से बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों का अंत हो जाएगा। फिर भी रविवार के कानून के समय नीची दीवार के नीचे से चुपके से घुसा हुआ शत्रु राष्ट्रीय पतन का दंड ले आता है।
और तब महान धोखेबाज मनुष्यों को ये मना लेगा कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वही इन बुराइयों का कारण है। वो वर्ग जिसने स्वर्ग के रोष को उकसाया है अपने सब कष्टों का दोष उन पर मढ़ देगा जिनकी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता उल्लंघनकर्ताओं के लिए निरंतर एक फटकार है। ये घोषित किया जाएगा कि लोग रविवार के विश्राम दिन का उल्लंघन करके परमेश्वर को रुष्ट कर रहे हैं कि इस पाप ने ऐसी विपत्तियां लाई हैं जो तब तक नहीं थमेंगी जब तक रविवार का पालन कठोरता से लागू न कर दिया जाए, और कि जो चौथी आज्ञा के दावे प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार रविवार के प्रति श्रद्धा को नष्ट करते हुए वे लोगों के उपद्रवी हैं जो उनके ईश्वरी अनुग्रह और सांसारिक समृद्धि में पुनर्स्थापन को रोक रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दास के विरुद्ध प्राचीन काल में लगाया गया आरोप समान रूप से भली भांति स्थापित आधारों पर फिर दोहराया जाएगा। और हुआ कि जब अहाब ने एलिया को देखा तब अहाब ने उससे कहा, क्या तू ही है जो इसराइल को क्लेश में डालता है? उसने उत्तर दिया, मैंने इसराइल को क्लेश में नहीं डाला, परंतु तू और तेरे पिता का घराना, क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञाओं को त्याग दिया है और तू बालों के पीछे चला है। एक राजा 18:17-18। जब लोगों का क्रोध झूठे आरोपों से भड़काया जाएगा तब वे परमेश्वर के दूतों के प्रति बहुत हद तक वही मार्ग अपनाएंगे जो धर्मत्यागी इसराइल ने एलिया के प्रति अपनाया था। महान संघर्ष 590।
प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 के महान भूकंप की घड़ी में इस्लाम की तीसरी विपत्ति, जो कि सातवीं तुरही भी है, तब बजेगी और वो राष्ट्रों को क्रोधित कर देगी। इस्लाम के विरुद्ध राष्ट्रों के उस क्रोध का उपयोग संसार को भरमाकर उसी खोखले वादे को स्वीकार कराने के लिए किया जाएगा जो पृथ्वी के पशु के लिए अभी अभी विफल हुआ था। वो खोखला वादा ये होगा कि पोप के अधिकार के चिन्ह से प्रदर्शित कैथोलिक धर्म के अधिकार के अधीन हो जाने पर परमेश्वर के बढ़ते हुए न्याय रुक जाएंगे। वो वादा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पहले ही अप्रभावी सिद्ध हो चुका था तब घबराई हुई दुनिया के सामने एक वादे के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि यदि विश्व के राष्ट्र केवल सहमत हो जाए और इस्लाम द्वारा उत्पन्न युद्ध से निपटने के उद्देश्य से एक विश्व सरकार के स्थापित होने की अनुमति दे दें तो स्थिरता लौट आएगी। धर्म ग्रंथों में जिस शक्ति की पहचान की गई है जो हर व्यक्ति को इस्लाम के विरोध में एकजुट करती है वो इस्लाम है, परंतु वो एकजुटता राजाओं का परम छल है।
तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और एक पुत्र उत्पन्न करेगी और उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख को सुन लिया है और वो मनुष्य वनगधे के समान होगा। उसका हाथ सब मनुष्यों के विरुद्ध होगा और सब मनुष्यों का हाथ उसके विरुद्ध होगा, और वो अपने सब भाइयों के सामने निवास करेगा। उत्पत्ति 16:11-12।
इश्माएल इस्लाम धर्म के आध्यात्मिक पिता है। ये सत्य है कि इस्लाम के जनक मुहम्मद इतिहास में 7वीं सदी तक प्रकट नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर अंतिम दिनों में आध्यात्मिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राचीन ऐतिहासिक लोगों का उपयोग करता है।
यहोवा इज़राइल का राजा और उसका छुड़ाने वाला सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं, और मेरे समान कौन है? वो पुकारे, उसे घोषित करे, और जब से मैंने प्राचीन लोगों को ठहराया है तब से उसे मेरे लिए क्रम से बताए, और जो बातें आने वाली हैं और जो आगे होंगी वे उन्हें दिखाए। यशाया 84:6-7।
इश्माएल के जन्म से पहले ही उसका नाम रख दिया गया था और उसकी भविष्यवाणी संबंधी भूमिका निर्धारित कर दी गई थी। उसके आत्मिक वशजों के हाथ हर मनुष्य के विरुद्ध होंगे और हर मनुष्य का हाथ उसके विरुद्ध होगा, और प्रगतिशील उदारवाद की मूर्खता पूकनर शिक्षा के विपरीत बाइबल सिखाती है कि इश्माएल अपने सब भाइयों के सामने निवास करेगा। वे अपने आसपास की संस्कृति में आत्मसात नहीं होते, बल्कि बहुत से लोग उसकी निंदा करते हैं, उसके विरुद्ध विरोध करते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। इश्माएल का स्वभाव ये है कि वह एक जंगली मनुष्य होगा। इस्लामी आस्था में किसी शांतिपूर्ण वर्ग के अस्तित्व का विचार न तो परमेश्वर के वचन में समर्थित है और न ही कुरान में। दानियल के 6 अध्याय में 2 अध्यक्षों और 120 अधिपतियों का धोखा उस धोखे की पहचान कराता है जो 10 राजाओं पर तब थोपा जाता है जब उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि रोम के नियंत्रण में एक विश्व सरकार लागू करने का उद्देश्य और तात्कालिकता, तीसरी हाय कही जाने वाली इस्लामी युद्ध की बढ़ती हुई संकट से निपटना है। एक बार जब पशु की प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी और उसे बोलने का अधिकार दे दिया जाएगा, तब दुनिया को बहुत देर से यह पता चलेगा कि पाप सत्ता का लक्ष्य उन लोगों पर है जो 7वें दिन के सप्त दानियल को मानते हैं, न कि उस शत्रु पर जो बिना पहरे की दक्षिणी दीवार से चुपके से भीतर घुस आया था।
ईश्वर के वचन ने आसन्न खतरे की चेतावनी दे दी है। यदि इसे अनसुना कर दिया गया तो प्रोटेस्टेंट जगत को रोम के वास्तविक उद्देश्यों का पता तभी चलेगा जब फंदे से बच निकलना बहुत देर हो चुका होगा। वो चुपचाप शक्ति हासिल कर रही है। उसके सिद्धांत विधायी सभागृहों में, चर्चों में और मनुष्यों के हृदयों में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वो अपने ऊंचे और विशाल भवन खड़े करती जा रही है जिनके गुप्त कक्षों में उसके पूर्व उत्पीड़नों की पुनरावृत्ति होगी। गुप्त रूप से और बिना संदेह उत्पन्न किए वो अपनी शक्तियों को मजबूत कर रही है ताकि जब उसके प्रहार का समय आए वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसे केवल अनुकूल स्थिति चाहिए और वो उसे पहले से ही मिल रही है। हम शीघ्र ही देखेंगे और महसूस करेंगे कि रोमन तत्व का उद्देश्य क्या है। जो कोई भी ईश्वर के वचन पर विश्वास करेगा और उसका पालन करेगा, उसी कारण उसे निंदा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 8:5-1।
संयुक्त राष्ट्र से संबंधित वो छल जिसे पापल सत्ता द्वारा अंजाम दिया जाता है, जो उनके हृदयों में प्रतिशोध उत्पन्न करता है, पवित्र शास्त्रों में अक्सर चित्रित किया गया है, और दारियस की कहानी इस सत्य का प्रमुख उदाहरण है। ये ऐसा छल है जो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अंजाम दिया जाता है और फिर विश्व भर में दोहराया जाता है। ये सत्य एलिया और येजेबेल की कहानी में पहचाना जाता है, फिर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना और हेरोदिया की कहानी में भी, तथा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने में भी। राष्ट्रों को क्रोधित करना, जो इस्लाम करता है, पापल सत्ता द्वारा अपनाई गई एक चाल है जो उसे संसार भर में सप्त पालकों पर आक्रमण करने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। इस्लाम का पहला उल्लेख शास्त्रों में इश्माएल के परिचय के साथ होता है, और दुनिया के अंत में इस्लाम की जो भूमिका बताई गई है, यानी दुनिया को सर्वव्यापी दहशत में डाल देना ताकि लोग किसी भी प्रस्ताव को समाधान के रूप में स्वीकार कर ले, वही उस छल को सफल होने देती है। यही छल संयुक्त राष्ट्र 10 राजा को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और अपना राज्य 7वां राज्य पपाई सत्ता पशु को देने पर सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। दारियस द्वारा चित्रित छल और अन्य भविष्य सूचक रेखाएं में ये बातें शामिल है। इस्लाम द्वारा राष्ट्रों को क्रोधित करने की भूमिका, वो अंतिम कारण जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र पापाई सत्ता का विनाश करता है, और उतना ही महत्वपूर्ण 8वें राज्य के रहस्य से जुड़ी परिस्थितियों की पहचान जो 7 में से है, अर्थात उसे आधुनिक बाबुल के प्रमुख के रूप में स्थापित किया जाना। सिंहों की मांद में दानियल एक अत्यंत जटिल भविष्य सूचक प्रतिनिधित्व है, लेकिन उसकी समझ केवल तभी आती है जब लाइन अपॉन लाइन की पद्धति अपनाई जाती है। हम अगले लेख में दानियल के छठे अध्याय को जारी रखेंगे।
जब हम एक समुदाय के रूप में ये समझेंगे कि ये पुस्तक हमारे लिए क्या अर्थ रखती है, तब हमारे बीच एक महान जागृति दिखाई देगी। मंत्रियों के लिए गवाहियां 103:1।